षष्ठ अध्याय काव्य रूपों का तुलनात्मक अध्ययन। फारसी काव्य रूप। फारसी के मुख्य 11 काव्य रूपों कसीदा, गजल, कथा, रुबाई, मसनवी, मरसिया, तर्जी अबंद, तरकीब अबंद, फर्द, मुस्तजाद तथा मुसम्मत में से सूफी कवियों ने अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गजल, कथा, रुबाई एवं मसनवी को अपनाया है। गजल और कथा अरबी और फारसी दोनों साहित्यों में प्रचलित हैं और रुबाई और मसनवी फारसी साहित्य के निजी काव्य रूप हैं। कसीदा। एक, गजल और कथा का आविर्भाव कसीदा से हुआ है। कसीदा अरबी काव्य का बहुत पुराना रूप है। अरबी कविता का आरंभ तो मरसिया। दो, एक पद्यात्मक प्रशंसा। नज्म की वह किस्म जिसमें किसी महान व्यक्ति अथवा आश्रयदाता की प्रशंसा की जाती है, ऐसी प्रशंसा में प्रायः यथार्थता कम होती है। दो, मरसिया की उत्पत्ति रिसा शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मरने वाले की प्रशंसा करना और उसको याद करके रोना पीटना। इस काव्य रूप में मृत व्यक्ति के गुणों का बखान दुख दर्द के साथ किया जाता है। शजाद अली संदेलवी के अनुसार मरसिया का लफ्ज रिसा से मुश्तक है जिसके लुघवी मानी मरने वाले की तारीफ व तौसीफ प्रशंसा के हैं। इस्तिलाहे शुअरा में मरसिया व सिन्फे सखुन है जिसमें किसी मुतवफ़ा मृत व्यक्ति की तारीफ व खूबियाँ हसरत व अंदोह शोक रंज व गम के साथ बयान की जाएं। श्री शजाद अली संदेलवी तारुफ़े मरसिया इलाहाबाद सन 1959 ईस्वी पृष्ठ 9 पृष्ठ संख्या 454। शोक काव्य से हुआ था परंतु जब कवियों ने कविता को व्यक्तिगत हितों का माध्यम बना लिया तो मरसिया का ह्रास और कसीदा का विकास प्रारंभ हो गया क्योंकि मरने वाला किसी को क्या लाभ पहुंचा सकता था। एक, अतः कसीदा अरबी काव्य में जाहिलियात युग 2 से विद्यमान है। कसीदा फारसी साहित्य का प्राचीनतम काव्य रूप है। वस्तुतः फारसी काव्य का श्री गणेश इसी काव्य से हुआ। 3, मौलाना शिबली ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि जिस जमाने में शायरी का आगाज प्रारंभ हुआ अरब की शायरी मद्दहीय प्रशंसात्मक कशायद पर महदूद सीमित थी, इसलिए ईरानी शुअरा कवियों ने भी इन्हीं की तकलीद अनुकरण की। उसके साथ सिला पुरस्कार और इनाम की तवक्को आशा सिर्फ कसीदा से हो सकती थी। ये असबाब कारण थे कि ईरान ने सबसे पहले कसीदा गोई से इब्तिदा की प्रारंभ किया। 4, एक, अरब की शायरी की इब्तिदा मरसिया ही से मालूम होती है मगर जब शायरी शायर के जाति मफाद पर मबनी हो गई तो मरसिया को जवाल होना शुरू हुआ, इसलिए कि इससे किसी किस्म के नफा की उम्मीद न थी क्योंकि मरने वाला किसी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता था। श्री राम बाबू सक्सेना तारीख़े अदब उर्दू नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 311। 2, इस्लाम पूर्व काल को जाहिलियात युग कहा जाता है। अरबों ने इस युग के काव्य को जाहिलियात काव्य की संज्ञा प्रदान की है। 3, फारसी शायरी की बुनियाद चूँकि तकल्लुफ आबुर्द और मद्दाही पर कायम हुई थी इसलिए उसकी इब्तिदा कसीदा गोई से हुई। श्री राम बाबू सक्सेना तारीख़े अदब उर्दू नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 311। 4, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ सन 1922 ईस्वी पृष्ठ 1। फारसी काव्य में यह रूप प्रत्येक युग में लोकप्रिय पृष्ठ संख्या 455 रहा है और आधुनिक काल के कवियों का ध्यान भी इसकी ओर आकृष्ट रहा है। इस रूप से फारसी भाषा सुव्यवस्थित एवं साहित्यिक बनती चली गई। मौलाना शिबली के शब्दों में कसीदा की एक खास जबान बन गई यानी बंदिश शब्द विन्यास में चुस्ती और जोर अल्फाज शब्द मतीन गंभीर और पुरशान बन गए। 1, गजल उद्बोधन गीत। यह एक प्रकार का गेय और प्रेम प्रधान काव्य रूप है। गजल का शाब्दिक अर्थ नारियों के प्रेम की बातें करना है इसलिए इसमें प्रेम भावनाओं का चित्रण होता है। गजल के 3 भाग होते हैं, 1 मतला, 2 मक्ता, 3 मतला एवं मक्ता के बीच के शेर। मतला यह गजल का प्रथम शेर होता है। एक मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग पाँच लखनऊ सन 1922 ईस्वी पृष्ठ 22। दो इस विषय के अतिरिक्त और जिस बात का सच्चा जोश और बलबला उत्साह दिल में उठे, चाहे उसकी मंशा उद्देश्य खुशी हो या गम या हसरत अपूर्ण इच्छा या नदामत पश्चाताप या शुक्र धन्यवाद या शिकायत या सब्र धैर्य या रिजा प्रभु की इच्छा या अकनात निस्पृहता निरीहता या तवक्कुल ईश्वरीय विश्वास या रगबत प्रवृत्ति रुचि या नफरत घृणा या रहम दया या इंसाफ न्याय या गुस्सा क्रोध या तजुब आश्चर्य या उम्मीद आशा या नाउम्मीदी निराशा या शोक अभिलाषा या इंतज़ार प्रतीक्षा या हुब्बे वतन देश प्रेम या कौमी हमदर्दी राष्ट्रीय संवेदना या तसव्वुफ या हिमायत दीनो मजहब धर्म का पक्ष लेना या दुनिया की बेसबाती संसार की क्षणभंगुरता और मौत का ख्याल या और कोई जज्बातें इंसानी में से उसको भी गजल में बयान कर सकते हैं। मौलाना हाली मुकदमा ए शेर व शायरी लाहौर मुबारक अली सन 1936 ईस्वी पृष्ठ 176। इसमें दो तुकांत चरणों पृष्ठ संख्या 456 का रखना अनिवार्य है। गजल के एक से अधिक मतले भी हो सकते हैं। दूसरे मतले को मतला एहसानी कहते हैं। दूसरे मतले के दो चरणों का तुकांत होना भी आवश्यक है। मक्ता गजल का अंतिम पद्य होता है। इसमें कवि अपना उपनाम बताता है। प्रोफेसर ब्राउन का मत है कि मक्ता अर्थात अंतिम शेर में उपनाम या तखल्लुस देने की अनिवार्य परंपरा का प्रवर्तन मुगल आक्रमण के पश्चात हुआ। प्रोफेसर ब्राउन ईजी ए लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 2 लंदन सन 1920 पृष्ठ 27। मक्ता में उपनाम का सुंदर एवं स्वाभाविक उल्लेख गजल का एक गुण समझा जाता है। मतला के बाद वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। गजल के शेर कम से कम 5 और अधिक से अधिक 17 हो सकते हैं, परंतु यदि 17 शेर के मतला और फिर शेर लिखे जाएं तो उसको 2 गजला कहते हैं। इसी प्रकार सिंह गजला एवं चहार गजला भी होते हैं। गजले के पद्य सदैव विषम होते हैं, सम नहीं। यदि किसी गजल में जुफत सम पद्य पाए जाते हैं तो इसे दोष समझा जाता है। गजल के 2 प्रकार हैं। 1 मुसलसल गजल, 2 गैर मुसलसल गजल। मुसलसल गजल में शेर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और पूर्वापर का तारतम्य होता है। ऐसी गजलें फारसी साहित्य में कम हैं। गैर मुसलसल गजल में शेर स्वतः पूर्ण होते हैं, वे पारस्परिक बंधन से मुक्त होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार की गैर मुसलसल गजलों में प्रत्येक पद्य का अपना पृथक विषय होता है। गजल सर्वप्रथम कसीदा की भूमिका के रूप में व्यवहृत होती थी। इस भूमिका में कवि प्रायः प्रेमिका की प्रशंसा करता था या उससे वियोग होने पर अपना उपालम्ब देता था। बाद में इस भाग को कसीदा से अलग कर दिया गया तो गजल बन गई। ऐसा कहना चाहिए कि कसीदा के वृक्ष से एक पृष्ठ संख्या 457 कलम पेड़ की डाली जो काट कर लगाई जाती है अलग लगा दिया गया। डॉक्टर अली असगर हिकमत के मतानुसार 11वीं शताब्दी ईस्वी में कसीदा के भूमिकात्मक लिखे गए छंदों ने स्वतंत्र रूप ग्रहण कर लिया, अर्थात ये गजल या उद्बोधन गीत हो गए। परंतु गजल 11वीं शती से बहुत पहले अपना स्वतंत्र रूप धारण कर चुकी थी। फारसी शायरी के आदम रूद की मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ सन 1922 ईस्वी पृष्ठ 26 मृत 329 हिजरी अर्थात सन 941 ईस्वी डॉक्टर रिजा ज़दा शफक तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 54 के समय में गज़ल विकसित हो चुकी थी। रुदकी ने कसीदा गज़ल रुबाई मसनवी आदि सब रूपों में सिद्धहस्तता प्राप्त की। वही पृष्ठ 50। उस समय वस्तुतः कसीदा एवं गज़ल का विषय एक ही था और वह था गुणगान। कसीदा में ममदूह जिसकी तारीफ की गई हो प्रशंसित की मदह प्रशंसा होती थी और गजल में माशूक प्रिय प्रेम पात्र की। कसीदा में ममदूह की दानशीलता न्यायप्रियता उदारता आदि की प्रशंसा होती थी और गजल में माशूक के रूप सौंदर्य आदि की। परंतु बाद में 5वीं शताब्दी हिजरी 11वीं शती ईस्वी में इसका क्षेत्र विस्तीर्ण हुआ। इसमें सूफी मत के निगूढ़ भावों का समावेश हो गया। मौलाना शिबली के शब्दों में गजल की तरक्की की तारीख तसव्वुफ से शुरू होती है। तसव्वुफ का ताल्लुक तमामतर वारिदात और जज्बात से है और उसकी तालीम की पहली अबजद अरबी वर्णमाला का एक विशेष क्रम इश्क व मोहब्बत है। तसव्वुफ की इब्तिदा अगर से 3री सदी के आगाज में हुई, लेकिन 5वीं शताब्दी पृष्ठ संख्या 458 सदी उसके ओज़े शबाब का ज़माना है और यही ज़माना गज़ल की तरक्की का पहला नौरोज़ है। मौलाना शिबली, शेरुल अज़म, लखनऊ, भाग 5, सन 1922 ईस्वी, पृष्ठ 28। सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध सूफी कवि सनाई, मृत्यु 545 हिजरी अर्थात 1150 ईस्वी ने गज़ल को विकसित किया, इसमें आ चुकी है। तदनंतर अनेक सूफी कवियों ने गजल को अपनाया और अपने उच्च कोटि के गूढ़ भावों द्वारा इसको उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मौलाना हाली ने लिखा है कि गजल को जिन लोगों ने चमकाया और मकबूले खासो आम लोकप्रिय बनाया है, ये वे लोग थे जो आज तक अहले अल्लाह, ईश्वर उपासक और साहिबे बातिन, महात्मा या कम से कम इश्के इलाही, ईश्वरीय प्रेम का राग गाने वाले समझे जाते हैं, जैसे सादी, रूमी, खुसरो, हाफिज, इश्की, मगरिबी, अहमद जाम और जामी बगैर हम इत्यादि। मौलाना हाली, मुकदमा ए शेर व शायरी, लाहौर, सन 1936 ईस्वी, पृष्ठ 149। सादी एवं हाफिज ये दो महाकवि इस वर्ग के प्रमुख आचार्य हैं। विश्व के जाजोलेमान साहित्यिकों में अब भी उनका उच्च स्थान है। संक्षेप में अब गजल का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। सांसारिक प्रेम के अलावा गजल में तसव्वुफ और भक्ति रस का भी वर्णन होता है। बहुत से सूफी कवियों ने इसी रंग में गजलें कही हैं। दूसरे कवियों ने अपनी गजलों में देश प्रेम आदि को रखा है। हिंदी साहित्य कोश, बनारस, संवत 2015, पृष्ठ 252।